का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जीवित या मृत। रानीहाट के जमींदार बाबू शारदा शंकर के घर की बेचारी विधवा छोटी बहू के मायके में कोई न था। एक एक करके सभी मर चुके थे। ससुराल में भी अपना कहने को कोई नहीं है, न पति है न पुत्र। एक जेठोत यानी जेठ का लड़का है, शारदा शंकर का छोटा लड़का, वही उसकी आंखों का तारा है। उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी मां को बड़ी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। उस बीमारी की वजह से वह बहुत दिनों तक तकलीफ में रही थी। अतः उस लड़के को उसकी विधवा चाची कादंबिनी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। कोई पराए लड़के को पाल पोस कर बड़ा करे तो उस पर हृदय का खिंचाव और प्रेम मानो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं रहता। जहां सामाजिक अधिकार बिल्कुल ना हो, सिर्फ स्नेह का ही हक हो, वहां बेचारा अकेला स्नेह समाज के सामने अपने हक को किसी दलील के बूते पर साबित नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता। बल्कि वह तो अपने उस अनिश्चित हृदय के धन को दूने आवेग और उससे भी ज्यादा आकुलता के साथ सिर्फ चाहने ही लगता है। विधवा कादंबिनी ने अपने सारे रुके हुए स्नेह को इस छोटे से बच्चे पर सींच कर एक दिन सावन की रात को एकाएक इस लोक से कूच कर दिया। अचानक न जाने कैसे उसके हृदय की धुकधुकी बंद हो गई। दुनिया में और सब जगह तो समय ज्यों का त्यों चल ही रहा था, सिर्फ उस स्नेहपूर्ण छोटे से कोमल हृदय के भीतर ही समय की घड़ी के पुर्जे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। पीछे कहीं पुलिस का अड़ंगा न लग जाए, इस डर से बिना दिखावे के जमींदार के चार ब्राह्मण कर्मचारी अर्थी को जल्दी से शमशान लेकर चल दिए। रानीहाट का मसान गांव से बहुत दूर था। तालाब के किनारे एक झोपड़ी है और उसके पास ही एक बड़ा भारी बड़ का पेड़। चारों तरफ मैदान ही मैदान नजर आता है और कुछ नहीं। पहले यहां नदी बहती थी, अब वह बिल्कुल सूख गई है। उस सूखी नदी का ही कुछ हिस्सा खोदकर मसान का तालाब बना दिया गया है। नदी की जगह उस तालाब को ही यहाँ के लोग मानते हैं। अर्थी को झोपड़ी के भीतर रखकर चारों जने चिता के लिए आने वाली लकड़ियों का इंतजार करने लगे। बहुत देर तक बैठे बैठे जब बिल्कुल उकता गए तो उनमें से निताई और गुरुचरण यह देखने के लिए चल दिए कि लकड़ी आने में इतनी देर क्यों हो रही है। बाकी के दो विधु और वनमाली अर्थी के पास बैठे रहे। सावन की अंधेरी रात थी, आकाश में चारों ओर बादल ही बादल मंडरा रहे हैं, कहीं एक तारा तक नहीं दिखाई देता। अंधेरी झोपड़ी में दोनों जने चुपचाप बैठे हुए हैं। एक के दुपट्टे में दिया सलाई और मोमबत्ती बंधी हुई थी। बरसात से सर्द हो जाने के कारण दिया सलाई बहुत जलाई पर जली नहीं। उस पर साथ में जो लालटेन थी वह भी बुझ गई। बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद एक ने कहा, भैया एक चिलम तम्बाकू कहीं से मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। जल्दी में कुछ लाभ ही तो नहीं सके। दूसरे ने कहा, मैं जल्दी से जाकर एक दौड़ में सब ला सकता हूं। वनमाली के भागने के इरादे को ताड़कर विधु ने कहा, जरा सूरत तो देखूं। तुम जाओ मौज उड़ाने और मैं यहां अकेला बैठा रहूं, क्यों? इसके बाद बातचीत बंद हो गई। 5 मिनट 1 घंटे के बराबर मालूम होने लगे। जो लकड़ी लाने गए थे उन्हें वे मन ही मन गालियां देने लगे। इनके मन का यह संदेह कि वे दोनों जरूर कहीं आराम से मजे में बैठे तंबाकू पीते और गप्पे मारते होंगे बढ़ता ही गया। आसपास कहीं भी कोई आहट नहीं, सिर्फ तालाब के किनारे से लगातार झिंगरों की झनकार और मेंढकों की टर टर सुनाई दे रही है। इतने में कुछ ऐसा लगा कि जैसे खाट जरा कुछ हिली हो। मुर्दे ने मानो करवट बदली। विधु और वनमाली दोनों कांप उठे और राम नाम जपने लगे। इतने में झोंपड़ी में एकाएक एक गहरी उसांस सी सुनाई पड़ी। विधु और वनमाली उसी दम उछलकर झोंपड़ी से बाहर निकल आए और सीधे गांव की तरफ भाग खड़े हुए। करीब 1.5 कोस रास्ता तय करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके बाकी दोनों साथी लालटेन हाथ में लिए वापस आ रहे हैं। दरअसल वे तंबाकू ही पी रहे थे। लकड़ी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी आकर समाचार दिया, पेड़ काटकर लकड़ी चिरवाई जा रही है, बस अब आने ही वाली समझो। जवाब में विधु और वनमाली ने झोपड़ी का सारा किस्सा कह सुनाया। निताई और गुरुचरण को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन दोनों ने बात जड़ से उड़ा दी और अर्थी को अकेली पड़ी छोड़ाने की बेवकूफी पर दोनों को खूब फटकारा भी। फिर देर न करके चारों जने जल्द ही मसान की उसी झोंपड़ी में पहुंचे। भीतर जाकर देखा तो मुर्दे का पता नहीं, खाली खटिया पड़ी हुई है। चारों के चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। संदेह हुआ कहीं सियार ना ले गया हो, पर वहां तो ऊपर का कपड़ा तक नहीं है। पता लगाते लगाते बाहर निकलकर देखा तो झोपड़ी के दरवाजे के पास जो थोड़ी सी कीच जम गई थी उस पर स्त्री के छोटे छोटे पांव के ताजे निशान बने हुए हैं। सोचने लगे कि शारदा शंकर बाबू कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्हें इस तरह का भूत का किस्सा सुनाकर सहसा उनसे किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद करना बिल्कुल असंभव है। अतः चारों आदमियों ने खूब सोच विचार कर अंत में यही तय किया कि उनसे कह दिया जाए कि दाह कर्म हो गया, बस इसी में खैर है, वरना सबकी जान के लिए मुसीबत हो जाएगी। सवेरे जो लकड़ियां लेकर आए उन्हें समाचार मिला कि देर होती देख रात ही में सब काम खत्म कर दिया गया। झोपड़ी में लकड़ियां मौजूद थीं। इस विषय में जल्दी किसी को संदेह भी नहीं हो सकता था। क्योंकि मुर्दा कोई ऐसी कीमती चीज नहीं कि जिसे कोई धोखा देकर उड़ा ले जाएगा। सभी जानते हैं कि कभी कभी बीमार शरीर में जीवन का जब कोई लक्षण ही नहीं पाया जाता, तब भी बहुधा उसमें प्राण मौजूद रहते हैं। फिर यथा समय उस शव जैसे शरीर में सांस चलने लगती है। कादंबनी भी असल में मरी नहीं थी, अचानक किसी वजह से उसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी। जब वह होश में आ गई तो देखा कि उसके चारों तरफ घोर अंधकार ही अंधकार है। हमेशा जहां वह सोती थी, उसे मालूम हुआ कि यह वह जगह ही नहीं है। एक बार उसने पुकारा, जीजी, पर अंधेरे घर में किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। डरते डरते वह उठकर बैठ गई और कुछ देर पहले की अपने मरने की बात याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उफ, अचानक छाती के भीतर कैसा जबरदस्त दर्द उठा था, दम घुटने लगा था। उसकी जेठानी घर के कोने में बैठी अंगीठी पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। कादंबनी से मारे दर्द के खड़ा न रहा गया, वह पछाड़ खाकर बिछौने पर गिर पड़ी थी। उसने रुधे हुए स्वर से कहा था, जी जी, जरा लल्ला को ला दो मेरे पास, मेरा जी घबरा रहा है। उसके बाद उसकी आंखों के आगे सब काला स्याह हो गया था, मानो किसी लिखी हुई कॉपी पर स्याही भरी दवात उलट पड़ी हो। कादंबनी की सारी स्मृति और चेतना, विश्व ग्रंथ की सारी लिखावट पल भर में एकाकार हो गई। बेचारी विधवा को इतनी भी सुध नहीं कि उसके प्यारे लल्ला ने उसे एक बार आखिरी वक्त स्नेह और ममता से भरे अपने मीठे गले से चाची कहकर पुकारा था या नहीं। उसे इतना भी याद नहीं कि वह अपने इस अनंत और अज्ञात मरण के सफर के लिए अपनी चिर परिचित पृथ्वी से उस अंतिम स्नेह के खजाने चाची को साथ लाई है या नहीं। पहले तो उसे ऐसा लगा कि यमपुरी शायद ऐसी ही सुनसान और चिर अंधकारमय होती होगी, वहां कुछ भी देखने को नहीं, सुनने को नहीं, काम नहीं, काज नहीं, सिर्फ हमेशा इसी तरह उठकर जागकर अंधेरे में बैठे रहना पड़ता है। उसके बाद जब खुले हुए दरवाजे से अचानक बरसाती ठंडी हवा का एक झोंका आया और मेंढकों की टर टर कानों में पड़ी, तो उसके मन में अपने छोटे से जीवन की, बचपन से लेकर अब तक की सारी वर्षा ऋतुओं की याद जाग उठी। फिर उसे अपने नीचे जमीन का अनुभव हुआ। इतने में एक बार बिजली चमक उठी। इस क्षणिक उजाले में सामने तालाब, बरगद का पेड़, दूर तक फैला हुआ मैदान और पेड़ ही पेड़ नजर आए। उसे याद आ गई, कभी कभी पुण्य तिथि के दिन इस तालाब के किनारे आकर उसने स्नान किया है। उस वक्त इसी मसान में मुर्दा देखकर मृत्यु उसे कैसी भयानक जान पड़ती थी। पहले तो उसके मन में आई कि घर लौट चले, फिर सोचने लगी कि मैं जीवित नहीं हूं, मुझे घर में कोई घुसने नहीं देगा, वहां जाने से घर वालों का अमंगल जो होगा, जीव राज्य से मुझे तो देश निकाला मिल चुका है, मैं तो अब अपनी प्रेत आत्मा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो वह इस अंधेरी रात में शारदा शंकर के सुरक्षित अंतःपुर से इस दुर्गम शमशान में आई कैसे? अगर दाह कर्म खत्म नहीं हुआ तो फिर उसे आग देने वाले आदमी कहां गए? उसे शारदा शंकर के प्रकाशमय मकान में अपने मरने की आखिरी घड़ियों की याद आ गई। इसके बाद गांव से बहुत दूर इस सुनसान अंधकारमय शमशान में अपने को अकेले देखकर उसने समझ लिया कि वह अब इस दुनिया के जीवित आदमियों में से नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं अब प्रेत आत्मा हूं, सबके लिए खौफनाक हूं, अमंगलकारिणी हूं। अब मुझसे किसी का हित नहीं हो सकता, सबका अहित ही होगा। मन में इन सब बातों का ख्याल आते ही उसे मालूम हुआ कि उसके चारों ओर के सांसारिक कायदे कानूनों के बंधन मानो टूट कर गिर पड़े हैं। मानो अब उसमें अद्भुत शक्ति तथा असीम स्वाधीनता आ गई है। अब वह जहां चाहे जा सकती है, जो चाहे कर सकती है। इस तरह के अभूतपूर्व और विचित्र भाव मन में आते ही वह उन्मत्त सी उठी, फिर सहसा आंधी की तरह झोंपड़ी से बाहर निकलकर अंधकारमय शमशान के ऊपर से दौड़ती हुई चल दी। उसके मन में लज्जा, भय, चिंता का लेशमात्र भी न रहा। बहुत देर तक चलते चलते उसके पैर थक गए, शरीर में भी थकावट आने लगी। मैदान पर मैदान पार करती गई पर उनका छोर ना आया। बीच बीच में धान के खेत थे, कहीं कहीं घुटनों तक पानी भी जमा था। जब पौ फटी, कुछ कुछ सवेरे का उजाला दिखाई दिया, तब एक गांव के किनारे की बस्ती में पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। तब उसे डर सा मालूम होने लगा। दुनिया के साथ, जिंदा आदमियों के साथ उसका अब यह नया संबंध कैसा हो गया, इसकी उसे कोई खबर तक नहीं। जब तक वह मैदान में थी, शमशान में थी, सावन की रात के अंधेरे में थी, तब तक मानो वह निर्भय थी और अपने राज्य में थी। दिन के उजाले में आदमियों की बस्ती उसे बहुत ही डरावनी जगह मालूम होने लगी। आदमी भूत से डरता है और भूत आदमी से। मृत्यु नदी के दोनों किनारों पर इन दोनों का निवास है। कादम्बिनी के कपड़े कीचड़ से सन गए थे। अद्भुत भेष था उसका और रात भर जागने से वह पागल सी हो रही थी। चेहरा उसका ऐसा लग रहा था कि आदमी उसे देखकर डर सकते थे। लड़के तो शायद दूर भागकर उस पर ढेले भी फेंकते। गनीमत हुई कि राह चलते एक भले आदमी ने उसे सबसे पहले इस दशा में देख लिया। उसने पास आकर पूछा, बेटी, तुम किसी भले घर की कुलवधू जान पड़ती हो, तो इस वेश में अकेली कहां जा रही हो? कादम्बिनी ने पहले तो कुछ जवाब नहीं दिया और एकटक उसके मुंह की तरफ ताकती रही। एकाएक उसे कुछ जवाब नहीं सूझ पड़ा। वह संसार में मौजूद है, किसी भले घर की कुलवधू सी जान पड़ती है, राह चलता पथिक उससे कुछ पूछ रहा है, ये सब बातें उसे अनहोनी सी जान पड़ने लगी। पथिक ने उससे फिर पूछा, चलो बेटी, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ। कादम्बिनी सोचने लगी, ससुराल लौटना तो अब व्यर्थ है, वहां स्थान कहाँ और मायके में है ही कौन। तब उसे अपनी बचपन की एक सहेली योगमाया की याद आई। योगमाया के साथ यद्यपि उसका छुटपन में ही बिछो हो गया था, फिर भी बीच बीच में उससे चिट्ठी पत्री चलती रहती थी। चिट्ठी के द्वारा ही कभी कभी उन दोनों में प्यार भरी बातों की लड़ाई भी चलती थी। कादम्बिनी दिखाना चाहती थी कि उसका प्रेम जोरदार है, वह उसे बहुत चाहती है। उधर योगमाया भी जताना चाहती थी कि जितना वह चाहती है उतना सखी की तरफ से उसे प्रेम नहीं मिलता। दोनों ही इस बात का दावा करती थीं कि किसी मौके पर एक बार दोनों का मिलन हो जाए तो दोनों में से कोई भी किसी को घड़ी भर के लिए आंख से ओझल न होने दे। कादम्बिनी ने उस भले आदमी से कहा, निशिंदापुर में मुझे श्रीपति बाबू के घर पहुंचा दीजिए। वह पथिक कलकत्ता जा रहा था। निशिंदापुर यद्यपि पास न था, फिर भी उसके रास्ते में ही पड़ता था। उसने खुद इंतजाम करके कादम्बिनी को श्रीपति बाबू के घर पहुंचा दिया। दोनों सखियों में मिलाप हुआ। पहले पहचानने में कुछ देर लगी, फिर बाद में बचपन का दृश्य दोनों की आंखों में कर्मशः उठा। योगमाया ने कहा, आज मेरे बड़े भाग्य हैं। सचमुच किसी तरह तुम्हें मैं इतनी जल्दी इतनी आसानी से देख सकूंगी, इसकी मुझे सपने में भी आशा नहीं थी। पर बहन, ऐसे कैसे चली आई, सो तो बताओ। ससुराल वालों ने तुम्हें यहां आने कैसे दिया। कादम्बिनी पहले तो चुप रही, फिर अंत में बोली, बहन, ससुराल की बात मुझसे ना पूछो। मुझे तो तुम अपने यहां की दासी की तरह एक कोने में पड़ी रहने देना। मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूंगी। योगमाया ने कहा, बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो, दासी की तरह क्यों रहोगी तुम? तुम तो मेरी सबसे ज्यादा प्यारी सहेली हो। तुम मेरी। इतने में श्रीपति भीतर आ गए। कादम्बिनी कुछ देर तो उनके मुंह की ओर देखती रही, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उसने ना तो घूंघट खींचा और ना किसी तरह का संकोच या शर्म का भाव ही दिखाया। कहीं उसकी सहेली के विरुद्ध श्रीपति कुछ सोच न बैठे, इसलिए योगमाया ने बड़ी फुर्ती से पति को उसके बारे में तरह तरह से समझाना शुरू किया। पर इतना कम समझाना पड़ा और श्रीपति ने इतनी जल्दी योगमाया की सब बातें मान ली कि योगमाया अपने मन में विशेष संतुष्ट ना हो सकी। कादम्बिनी सहेली के घर आई तो सही, पर सहेली से ज्यादा हिल मिल ना सकी। उसकी अपने ख्याल से बीच में मौत की एक दीवार सी खड़ी रही, जिसके मन में अपने संबंध में हमेशा एक तरह का संदेह और सजग भाव सा बना रहे, उसके लिए दूसरों से हिलना मिलना कठिन हो जाता है। कादम्बिनी योगमाया के मुंह की ओर देखती और न जाने क्या क्या सोचती रहती। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसकी सहेली अपने पति और घर गृहस्थी के साथ उससे बहुत दूर किसी और ही दुनिया में रहती है, मानो उस दुनिया के लोग स्नेह ममता और कर्तव्यों से घिरे हुए हैं और वह है शून्य छाया। उसकी सखी मानो अस्तित्व के देश में रहती है और वह लटक रही है अनंत के बीच। योग माया का भी जी न जाने कैसा हो गया। कादम्बिनी का जीवन रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। स्त्रियों को रहस्य नहीं सुहाता, कारण अनिश्चय को लेकर कविता की जा सकती है, वीरता दिखाई जा सकती है, पांडित्य प्रकट किया जा सकता है और सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन घर गृहस्थी नहीं की जा सकती। इसलिए स्त्रियां जिसे समझ नहीं पाती, उसके अस्तित्व को नष्ट करके या तो उससे सब तरह का संबंध ही तोड़ लेती हैं, या फिर उसे अपने हाथ से नया रूप देकर अपने काम आने लायक चीज बना लेती हैं। और अगर इन दोनों में से एक भी बात ना हो सकी तो फिर उस पर खूब खींचती और झंझलाती रहती हैं। हुआ भी यही, कादम्बिनी ज्यों ज्यों पहले की तरह अनजानी होने लगी, त्यों त्यों योग माया मन ही मन उसे चिढ़ने लगी। वह सोचने लगी कि ये कौन सी बला सर पर आ पड़ी, इसके सिवा दूसरी एक और आफत है, वह ये है कि कादम्बिनी खुद अपने से डरती है। क्या करे, यहां से अपने आप तो वह किसी तरह भाग नहीं सकती। जो भूत से डरते हैं उन्हें अपने पीछे डर जान पड़ता है। जहां दृष्टि नहीं पहुंचती वहीं डर है। कादम्बिनी को अपने में ही सबसे ज्यादा डर है, बाहर नहीं। यही वजह है कि किसी किसी दिन दोपहर को वह सूनी कोठरी में एकाएक चिल्ला उठता है, रात को दिए के उजाले में अपनी परछाई देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी ये हालत देखकर घर भर के लोगों के मन में एक तरह का डर पैदा हो गया। नौकर नौकरानी और योगमाया तक को जहां तहां जब तब भूत दिखाई देने लगा। अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जीवित या मृत का पहला भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।